आगे देखिए भाई सबक। व शर्तु नस्बिही अय शर्तु इंतिसाबिल मफ़ऊल लहू ला शर्तु कौनिल इस्मि मफ़ऊलन लहू। फस्समनु वल इकरामु फी कौलिका जिअतुका लिस्समनि वल इकरामिका ज़ाइरा इंदहू मफ़ऊलुन लहू अला मा यदुल्लु अलैहि हद्दुहू। وهذا كما قال في المفعول فيه إن شرط نسبه تقدير فيه وهذا أيضا خلاف اصطلاح القوم। भाई गुज़श्ता सबक में हमने मफ़ऊल लहू के बारे में पढ़ना शुरू किया था। भाई साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि मफ़ऊल लहू उस चीज का नाम है जिसकी वजह से फ़ेल मज़कूर को किया जाए। ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की अदब सिखाने के लिए। तो ये तादीबन मफ़ऊल लहू है, ये जो माकबल में फेल है ये इसकी वजह से किया गया भाई। और फिर इन्होंने आपको बतलाया था कि फेल से मुराद हदस है भाई। फेल से क्या मुराद है? हदस मुराद है, फेले इस्तेलाही मुराद नहीं। क्योंकि फेले इस्तेलाही तो कलीमे का नाम है, लफ्ज का नाम है। ज़रबतुहु तादीबन, ये जो ज़रबतु का लफ्ज है ये है फेले इस्तेलाही। क्योंकि फेले इस्तेलाही किसे कहते हैं? वो कलिमा जो अपने माना पर मुस्तकिलन दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना भी उसके साथ मिला हुआ हो, उस कलिमे को फेल कहते हैं। तो ज़रबतुहु तादीबन, ये ज़रबतु का जो लफ्ज है ये है फेले इस्तेलाही। और इन्होंने क्या कहा कि मफ़ऊल लहू वो है जिसकी वजह से फेले मज़कूर किया जाए। तो इस फेल से फेले इस्तेलाही मुराद नहीं हो सकता, क्योंकि फेले इस्तेलाही तो कलीमे का नाम है, लफ्ज का नाम है। और लफ्ज को किया नहीं जाता, लफ्ज को कहा जाता है, लफ्ज को कहा जाता है। फिर तो ज़रबतुहु तादीबन का माना यह बन जाएगा अगर आप इससे फेले इस्तेलाही मुराद ले लें कि ज़रबतुहु कि ये वाला जो फेल मैंने कहा तादीबन, किस लिए कहा? अदब सिखाने के लिए। हालांकि ये जरब तो हूं, ये लफ्ज मैंने उसको अदब सिखाने के लिए कहा, या वो जरब वाला जो फेल मैंने किया था वो अदब सिखाने के लिए था? तो वो जरब वाला जो हदस था वो अदब सिखाने के लिए था। ये जरब तू का लफ्ज जो कहा गया है ये तादीब के लिए नहीं है। बात समझ में आ गई। और फिर बतलाया था कि वो फेल जो है मजकूर होना चाहिए, चाहे हकीकतन मजकूर हो और चाहे हुक्मन मजकूर हो। कहते हैं ये मजकूर उनकी कैद के जरिए आजबनी तादीबू जैसी मिसालों से एहतराज किया। मसलन सूरत यह है, आपने जैद की पिटाई की है और अदब सिखाने के लिए की है। किस लिए पिटाई की? अदब सिखाने के लिए। तो अब मैं आपसे बाद में कहता हूं आजबनी तादीबू, मुझे आपकी वो तादीब पसंद आई। और वो तादीब किस तरह की गई थी? ज़र्ब के साथ की गई थी। तो यहां देखो आजबनी तादीबू, आजबा फेल है और अतादीबू उसका फाइल है। और इस तादीब का फेल जो है यानी ज़र्ब तो वो यहां मजकूर नहीं। तो मजकूरों की कैद के जरिए इस तरह की मिसालों से एहतराज करना मकसूद है, जहां मफ़ऊल लहू के साथ उसका फेल मजकूर न हो। आजबनी तादीबू के अंदर भी इसका फेल ज़र्ब तो मजकूर नहीं है। इस पर मोतरिस कहता है कि भाई तारीफ में तो सिर्फ यह आया कि मफ़ऊल लहू वो चीज है जिसकी वजह से फेल मज़कूर किया जाए, और यहां इसके साथ वो फेल मज़कूर नहीं। लेकिन फेल जुमला यानी मजमूए एतबार से कहीं ना कहीं तो जिक्र होगा, कहीं ना कहीं तो। जैसे मसलन दूसरी मिसाल ले लें, ज़रबतु ज़ैदन, देखो यहां वो ज़रबतु मज़कूर है, अगरचे आजबनी तादीबू के अंदर मज़कूर नहीं। लेकिन इन्होंने ये तो नहीं कहा कि उसी के साथ मज़कूर होना चाहिए, उन्होंने तो कहा मज़कूर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो ज़रबतु मज़कूर है, तो ये तादीब भी तारीफ के अंदर दाखिल हो रहा है, अगरचे ये मफ़ऊल लहू नहीं है। यहां पर क्या है? यहां तो ये फाइल बन रहा है आजबनी के लिए। तो फिर उसका जवाब दिया था साहिब जामी ने कि भाई मजकूर होने का यह माना नहीं है कि फिल जुमला कहीं पर भी मजकूर हो, बल्कि मजकूर होने का माना यह है कि उसी मफ़ऊल लहू के साथ वो फेल मजकूर होना चाहिए, और आजबनी तादीबू इस तादीब के साथ वो फेल मजकूर नहीं। तो मोतरिस फिर एतराज करता है कि भाई तादीब के साथ भी तो कहीं ना कहीं मजकूर होगा। मसलन दूसरा जुमला देख लें, ज़रब तो हूं तादीबन, यहां देखो तादीब के साथ ज़रब का फेल मजकूर है। तो आजबनी तादीबू ये मिसाल अभी भी तारीफ के अंदर दाखिल हो रही है, क्योंकि तारीफ क्या की? कि मफ़ऊल लहू वो चीज है जिसकी वजह से फेले मजकूर को किया जाए तो यह तादीब भी दाखिल है। इसके साथ अगरचे फेल जिक्र नहीं, लेकिन कहीं और तो इसके साथ फेल जिक्र है भाई, फिल जुमला किसी न किसी जगह पर, तो उसका जवाब दिया था कि भाई किसी और जगह इसके साथ मजकूर होना मुराद नहीं, बल्कि इसी तरकीब में इसके साथ मजकूर होना चाहिए। और आजबनी तादीब, इस तरकीब में तो यहां जरब तो इसके साथ मजकूर नहीं, लिहाजा इस जैसी मिसालें तारीफ से खारिज हो गई मजकूरों की कैद के जरिए, क्योंकि मजकूरों से क्या मुराद है कि उसी के साथ मजकूर हो और उसी तरकीब के अंदर मजकूर हो भाई। तो अलबत्ता कहते हैं अब भी एक इश्काल फिर भी रह जाता है कि मसलन इस तरह की मिसालें जैसे हैं आजबनी तादीबू अल्लजी ज़रबत ली अजली ही, मुझे पसंद आई वो तादीब अल्लजी ज़रबत ली अजली ही कि जिसकी वजह से आपने पिटाई की थी। अब यहां पर तादीब फाइल बन रहा है, मफूल लहू नहीं है, लेकिन यह तारीफ में दाखिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तादीब भी जिक्र है और आगे अल्लजी ज़रबत हू मौसूल सिला के अंदर ज़रबत फेल भी जिक्र है, तो तादीब के साथ उसका फेल भी मजकूर है। अगरचे उसमें आमिल नहीं है लेकिन साथ मजकूर तो है, उसी तरकीब में तो है। तो जवाब दिया था कि भाई मुराद यह है कि उसके साथ जिक्र हो, उसी तरकीब में हो और उस मफूल लहू के अंदर वो फेल अमल कर रहा हो। यहां जराबता जिक्र तो है लेकिन वो तादीब के अंदर अमल नहीं कर रहा, तादीब के अंदर तो आजबनी अमल कर रहा है और तादीब उसके लिए फाइल है। तो बहरहाल ये बड़ा कमजोर जवाब है क्योंकि तारीख में तो सिर्फ मजकूरन जिक्र है कि वो फेल क्या होना चाहिए, मजकूर होना चाहिए, यह भी नहीं जिक्र कि उसके साथ हो, यह भी नहीं जिक्र कि उसी तरकीब में उसके साथ हो, और यह भी नहीं जिक्र कि वो फेल उसके अंदर अमल कर रहा हो, नसब दे रहा हो। तो इनमें से कोई भी चीज तारीफ के अंदर तो मजकूर नहीं है, लेकिन कहते हैं बस यही जवाब दिया जा सकता है कि मुराद यह है, मुराद मजकूर होने से क्या मुराद, उसके साथ हो, उसी तरकीब में हो और उसके अंदर अमल कर रहा हो, उसको नसब दे रहा हो। और फिर बतलाया था कि ये मफूल लहू दो किस्म पर है, कभी माकबल वाला फेल जो है वो सबब बनता है मफूल लहू के लिए, जरब तो हूं तादीबन, ये जरब सबब है तादीब के लिए, जरब लगेगी तो क्या हासिल हो जाएगी, तादीब हासिल होगी। और कभी मफूल लहू सबब होता है फेल के लिए, जैसे काद तो अनिल हरबी जुबनन, मैं जंग से बैठा बुजदिली की वजह से। तो देखो बुजदिली सबब है जंग से बैठने का, एक शख्स पहले से बुजदिल है तो उस बुजदिली की वजह से वो जंग से भी बैठ गया, तो यहां मफूल लहू सबब है फेले मजकूर के लिए। और फिर उसके बाद इमाम जज्जाज का मजहब जिक्र फरमाया था साहिब काफिया ने कि इमाम जज्जाज जो हैं वो जमहूर नहवियों की मुखालफत करते हैं। जमहूर नहवी तो कहते हैं कि मफूल लहू एक मुस्तकिल मामूल होता है फेल का, जबकि इमाम सज्जाज फरमाते हैं कि नहीं, मफूल लहू कोई अलग चीज नहीं, ये वही मफूल मुतलक है। अलबत्ता लफ्ज इसके अलग हैं और मफूल मुतलक में जायज है कि लफ्ज अलग हो सकते हैं, जैसे कातु जुलूसन, कुऊद का माना भी बैठना, जुलूस का माना भी बैठना, तो दोनों के लफ्ज अगरचे अलग हैं लेकिन माना एक होना चाहिए। और यहां ज़रबतुहु तादीबन, इसमें इमाम सज्जाज फरमाते हैं लफ्ज अगरचे अलग हैं, एक ज़र्ब है दूसरा तादीब है, लेकिन माना एक ही है, यानी एक ही फेल दोनों से मुराद है, क्योंकि फेल तो एक ही है वो ज़र्ब वाला। तो बई एतबार कि इस फेल की वजह से दूसरे को तकलीफ हो रही है इसको ज़र्ब कहेंगे, और बई एतबार कि इससे दूसरे की इसलाह हो रही है इसी को क्या कहेंगे, तादीब कहेंगे। तो इमाम सज्जाज फरमाते हैं कि ये मफूल लहू कोई अलग चीज नहीं, ये मफूल मुतलक है, बता लफ्ज दोनों के अलग अलग हैं। और ये जो माकबल वाला फेल होता है इसके लिए बयान होता है, यानी इस मफूल लहू में इजमाल होता है, क्योंकि अदब सिखाने की कई सूरतें हो सकती हैं, ज़र्ब के जरिए भी, डांट के जरिए भी, और वैसे वाज़ो नसीहत के जरिए भी तादीब हो सकती है। तो इस तादीब के अंदर इजमाल था कि यह तादीब तो है लेकिन किस तरीके से है, तो माकबल में उसके साथ फेल को जिक्र करके बयान कर दिया गया कि यह तादीब किस तरीके से है, ज़र्ब के तरीके से है। मालूम हुआ इमाम सज्जाज के नजदीक मफूल लहू कोई अलग मामूल नहीं, बल्कि यह वो मफूल मुतलक ही है, अलबत्ता इसका लफ्ज अलग होता है और माकबल वाला फेल इसके लिए बयान होता है, वो इसकी सूरत बयान करता है। लेकिन साहिबे जामी ने इमाम सज्जाज के कौल को रद्द फरमाया कि एक नौ की तावील करके उसको दूसरी नौ में दाखिल करना, इस तावील से कोई चीज अपनी हकीकत से खारिज नहीं हो जाती। जैसे हाल जो है उसकी तावील की जाती है जर्फ के साथ, जा अनी जैदुन राकी बन, आया मेरे पास जैद इस हाल में कि वो सवार था, इसकी तावील जर्फ के साथ की जाती है और यूं कहा जाएगा जा अनी जैदुन वक्त रुकूबी, मेरे पास जैद आया सवारी के वक्त में, यानी उस वक्त वो सवारी कर रहा था जब वो मेरे पास आया। तो देखो माना दोनों का एक जैसा है, तो हाल की तावील की जाती है किसके साथ, ज़र्फ के साथ। इस तावील से ये नहीं लाजिम आता कि हाल कोई मामूल ही नहीं है, बल्कि हाल अलग मामूल है और ज़र्फ अलग मामूल है। तो तावील करके अगर मफूल लहू को मफूल मुतलक बना लिया जाए तो इससे यह लाजिम नहीं आता कि मफूल लहू अलग मामूल नहीं है, बल्कि मफूल लहू मुस्तकिल अलग मामूल है। बात समझ में आ गई जी। अब आइए आज के सबक पर आगे देखिए भाई, कहते हैं व शर्तु नस्बिही ऐ शर्तु इंतिसाबिल मफूल लहू ला शर्तु कौनिल इस्मि मफूलन लहू फस्समनु वल इकरामु फी कौलिका जिअतुका लिस्समनि वल इकरामिका ज़ाइरा इंदहु मफूलुन लहू अला मा यदुल्लु अलैहि हद्दुहु। अच्छा भाई पहले जरा मतन देखिए भाई, व शर्तु नस्बिहि तकदीरुल लामि व इन्नमा यजूज़ु हस्फुहा इदा काना फ़िअलन लिफ़ाइलिल फ़िअलिल मुअल्लली बिहि व मुक़ारिनन लहू फ़िल वुजूद। अब साहिब काफिया शर्त बयान कर रहे हैं मफूल लहू के मंसूब होने की, तो फरमाते हैं व शर्तु नस्बिहि तकदीरुल लामि, कि मफूल लहू के मंसूब होने की शर्त जो है वो तकदीर लाम है, कि वहां पर लाम मुकद्दर होना चाहिए, यानी उसका माना वहां मुकद्दर हो। गई साहिब काफिया यहां पर जमहूर नहवियों से इख्तिलाफ करते हैं, जैसे उन्होंने इख्तिलाफ किया था मफूल फी के अंदर। जमहूर नहवियों के नजदीक मफूल फी का मंसूब होना जरूरी है, अगर लफ्जों के अंदर फी जिक्र हो जाए तो उसको मफूल फी नहीं कहते बल्कि उसको मफूल भी ही गैर सरीह कहते हैं। लेकिन साहिब काफिया ने वहां पर भी जिक्र किया था व शर्तु नस्बी ही, कि मफूल फी के मंसूब होने की यह शर्त है। मालूम हुआ उनके नजदीक जो गैर मंसूब हो यानी फी के साथ है वो भी मफूल फी होता है। तो मसलन ज़रबतु ज़ैदन यौमल जुमाती, ये यौमल जुमा मंसूब है, ये जमहूर के नजदीक मफूल फी है भाई। और ज़रबतु ज़ैदन फी यौमिल जुमाती, यहां फी लफ्जों में मौजूद है तो जमहूर के नजदीक ये यौमल जुमा यहां पर मफूल फी नहीं है बल्कि ये मफूल भी ही गैर सरीह है। लेकिन साहिब काफिया के नजदीक दोनों मफूल फी हैं। तो इसी तरह वो इख्तिलाफ करते हैं मफूल लहू में भी, जमहूर के नजदीक मफूल लहू हमेशा मंसूब होगा और हमेशा फेल होगा। ज़रबतुहु तादीबन, देखो ये तादीबन फेल है यानी मस्दर है और नीज ये मंसूब है। तो जमहूर के नजदीक मफूल लहू के अंदर मफूल लहू का मंसूब होना भी जरूरी और उसका फेल होना भी जरूरी है, जबकि साहिबे काफिया के नजदीक मफूल लहू का मंसूब होना भी जरूरी नहीं और मफूल लहू का फेल होना भी जरूरी नहीं। चुनाचे इसीलिए वो फरमाते हैं व शर्तु नस्बी ही, मफूल लहू के मंसूब होने की शर्त यह है। मालूम हुआ जो मंसूब नहीं होगा वो भी मफूल लहू होगा। तो देखो अरबी जुबान में आम तौर पर इल्लत बयान करने के लिए लाम इस्तेमाल किया जाता है, तो साहिबे काफिया के नजदीक जहां लफ्जों में लाम वगैरह या कोई ऐसा हर्फ जो इल्लत पर दलालत कर रहा हो तो वो भी मफूल लहू है और उसके नसब की शर्त जो है वो तकदीर लाम है कि वहां लाम मुकद्दर होना चाहिए। तो साहिब काफिया के नजदीक मफूल लहू का मंसूब होना भी जरूरी नहीं बल्कि मंसूब होने की शर्त वो बयान कर रहे हैं, शर्त नस्ब ही तकदीरुल लामी, के मफूल लहू के मंसूब होने की शर्त यह है कि वहां लाम मुकद्दर हो और अगर लाम लफ्जों में मौजूद है तो उसको भी वो मफूल लहू कहते हैं। मसलन मैं कहता हूं ज़रबतुहु लितादीबी, अब यहां लाम लफ्जों में मौजूद है तो जमहूर के नजदीक ये मफूल लहू नहीं क्योंकि मफूल लहू का मंसूब होना जरूरी, लेकिन साहिब काफिया के नजदीक ये जो लित तादीब आया ये भी मफूल लहू है क्योंकि ये माकबल के फील की इल्लत और उसका सबब बयान कर रहा है। और नीस क्या तारीफ की, मफूल लहू उस चीज का नाम है जिसकी वजह से फिले मजकूर किया जाए। तो जितुल समनी, इस समन को भी क्या कहना पड़ेगा, तो इस तारीफ के मुताबिक ये लिस समन ये भी मफूल लहू है। जितुका लिस समनी, समन घी को कहते हैं। जितुका, मैं आपके पास आया, लिस समनी घी के लिए, यानी मैं आपके पास घी लेने के लिए आया। तो देखो यहां पर ये लिसम से माकबल कौन सा फेल है, जितु यानी ये मजीअत का फेल है, और ये मजीअत का फेल किस लिए किया गया, लिसमनी घी की वजह से किया गया। तो जितु का लिसमनी, मैं आया आपके पास घी लेने के लिए। तो साहिब काफिया की तारीफ के मुताबिक ये लिसमन जो आया है ये भी मफूल लहू है। भाई बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि क्या तारीफ की, मफूल लहू वो है जिसकी वजह से फेले मजकूर को किया जाए, तो ये तारीफ लिसमन पर सादिक आ रही है। तो हासिले कलाम क्या कि जमहूर के नजदीक मफूल लहू का मंसूब होना भी जरूरी और फेल होना भी जरूरी है। जरबतुहु तादीबन, ये तादीबन मंसूब भी है और फेल भी है, यानी मस्तर है। जबकि साहिब काफिया के नजदीक मंसूब होना भी जरूरी नहीं, लिहाजा जरबतुहु लितादीब, ये लितादीब भी उनके नजदीक मफूल लहू है। हां नसब की शर्त यह है कि लाम मुकद्दर होना चाहिए, और नीज जितुकल समनी ये भी तारीफ के अंदर दाखिल हो रहा है क्योंकि इसकी वजह से फेल मस्कूर यानी मजीअत को किया गया। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं देखिए मतन मतन, व शर्तु नस्बी ही तकदीर उल्लामी, और मफूल लहू के मंसूब होने की शर्त जो है वो तकदीर लाम है, कि लाम वहां क्या होना चाहिए, मुकद्दर होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर लाम लफ्जों में मजकूर होगा फिर तो वो जर देगा। भाई ज़रबतुहु लितादीबी, लाम लफ्जों में मौजूद होगा तो वह जर देगा, यह भी मफूल लहू है साहिब काफिया के नजदीक, लेकिन मंसूब होने के लिए क्या जरूरी कि लाम लफ्जों में नहीं होना चाहिए बल्कि मुकद्दर होना चाहिए। आगे देखिए मतन मतन, व इन्नमा यजूज़ु हस्फुहा इदा कान फ़िअलन लिफ़ाइलिल फ़िअलिल मुअल्लल बिही व मुक़ारिनन लहू फ़िल वुजूद। अब आगे शर्त जिक्र करेंगे कि मफूल लहू के मंसूब होने की शर्त क्या है। देखो मफूल लहू साहिब काफिया के नजदीक ज़रबतुहु लितादीबी ये भी मफूल लहू है, ये लाम के साथ, और ज़रबतुहु तादीबन ये भी मफूल लहू है। तो एक में लाम जिक्र है, एक में लाम हजफ है। भाई तो ये लाम के हजफ की शराइत क्या हैं वो अब बयान करने लगे हैं कि किस जगह पर लाम को हजफ करके मफूल लहू को मंसूब पढ़ना जायज। मैंने बताया अरबी जुबान में इल्लत बयान करने के लिए अक्सर लाम इस्तेमाल किया जाता है, तो किस मकाम पर लाम को हजफ करके मफूल लहू पर नसब पढ़ना जायज है उसकी शर्त जिक्र फरमा रहे हैं साहिब काफिया। भाई तो याद रखो मफूल लहू के मंसूब होने की तीन शर्तें हैं। भाई पहली क्या कि वो मस्तर होना चाहिए, मस्तर होना चाहिए। ज़रबतुहु तादीबन, ये तादीबन क्या है, देखो मस्तर है। भाई दूसरी शर्त यह है कि माकबल वाले फेल का और इस मफूल लहू दोनों का फाइल एक ही जात होनी चाहिए, दोनों का फाइल एक ही जात होनी चाहिए। और ये जो माकबल में फेल आया इसको कहते हैं फेल मुअल्लल बिही। ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की अदब सिखाने के लिए। तो ये जो ज़रबतु फेल आया ये है फेल मुअल्लल बिही। अल्लला युअल्लिलु तालील का माना होता है इल्लत बयान करना। तो मुअल्लल, देखो ये इसमें मफूल का सीगा है, वो चीज जिसकी इल्लत बयान की जाए। यहां पर भी ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की क्योंकि आगे उसकी इल्लत बयान की गई, सबब बयान किया गया तादीबन अदब सिखाने के लिए। तो ये ज़रबतु क्या हुआ, ये वो फेले मुअल्लल भी ही है। ये क्या है, यानी ये वो फेल है जिसकी इल्लत बयान की गई है। देखो तर्जमे पर गौर करो, फेले मुअल्लल बिही, वो फेल जिसकी इल्लत बयान की गई है बिही ऐ बिल मफूल लहू, मफूल लहू के जरिए। फेले मुअल्लल बिही किसे कहते हैं, वो फेल जिसकी इल्लत मफूल बिही के जरिए बयान की जाए। ज़रबतुहु तादीबन, ये ज़रबतुहु क्या है, ये वो फेल है जिसकी इल्लत बयान की गई है किसके जरिए, आगे तादीबन यानी मफूल लहू के जरिए। तो ज़रबतु को क्या कहेंगे, फ़िअले मुअल्लल बिही। भाई तो पहली शर्त क्या है मंसूब होने की, कि वो मफूल लहू मस्दर होना चाहिए। भाई और दूसरी शर्त क्या है, कि वो फ़िअले मुअल्लल बिही के फाइल ही का फेल होना चाहिए, यानी यूं कहो कि फ़िअल मुअल्लल बिही का फाइल और यह मफ़ऊल लहू का फाइल एक ही जात होनी चाहिए। ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की अदब सिखाने के लिए। यह ज़रबतु का फाइल कौन? मुतकल्लिम। और यह अदब भी किसने सिखाया? मुतकल्लिम ने ही सिखाया है, किसी और ने नहीं। तो देखो दोनों का फाइल एक ही जात है, माकबल के फेल का फाइल भी मुतकल्लिम और आगे तादीब या अदब सिखाने वाला भी मुतकल्लिम। तो ये दूसरी शर्त आ गई। पहली शर्त क्या कि मफूल लहू के नसब की शर्त क्या है कि वो मस्दर होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये कि फ़िअल मुअल्लल बिही और इस मफूल लहू दोनों का फाइल एक ही होना चाहिए, और तीसरी शर्त यह है कि दोनों का जमाना भी एक होना चाहिए। दोनों का जमाना भी एक होना चाहिए, यानी वो जो माकबल में फेल है और ये जो मफूल लहू है दोनों का जमाना एक हो। और यहां पर देखो, यहां पर तो एक ही फेल है, वही जर्ब वाला फेल है, तो यही फेल बाई लिहाज कि इससे दूसरे को तकलीफ हो रही है ये जर्ब कहलाता है, और यही फेल बाई लिहाज कि इससे दूसरे की इसलाह हो रही है और वो अच्छे अखलाक सीखता जा रहा है तो ये तादीब है। तो मालूम हुआ यहां तो एक ही फेल है, वही फेल जर्ब भी है और वही फेल तादीब भी है, तो देखो दोनों का जमाना एक ही है। जो जो उसको जर्ब लग रही है साथ साथ वो अदब सीखता जा रहा है, तो दोनों का जमाना एक। तो कितनी शर्तें हैं मफ़ऊल लहू के मंसूब होने की? तीन शर्तें। पहली शर्त क्या कि वो मस्दर हो, दूसरी शर्त क्या के फ़िअल मुअल्लल बिही और मफ़ऊल लहू दोनों का फाइल एक होना चाहिए, और तीसरी शर्त यह कि दोनों का जमाना भी एक, यानी फ़िअल मुअल्लल बिही और मफ़ऊल लहू का जमाना एक होना चाहिए। तो वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह इन नमा यजूज़ु हज़्फुहा, हा ज़मीर लाम को राजे है, वो जो पीछे आया था तकदीरुल्लामी, और लाम का हज़्फ जायज है इज़ा कान फ़िअलन। देखो तीन शर्तें मैंने बताया, लेकिन साहिबे काफिया एक ही शर्त बना देंगे तीनों को मिलाकर। कैसे? देखो कहते हैं वही नमा यजूज हसूहा के लाम का हजफ जायज है इदा का नफ़ेलन लिफाइलिल फ़िअलिल मुअल्लल बिही, कि जब वो मफ़ऊल लहू फेल हो। क्या हो? फेल हो। देखा पहली शर्त क्या थी कि वो मस्दर होना चाहिए, साहिब काफिया ने भी क्या कहा इजा काना फेलन, जब वो फेल हो। फेल से क्या मुराद है? हदस मुराद है, यानी मस्दर मुराद है। इजा काना फेलन, जब वो मफ़ऊल लहू फेल हो। किसका फेल हो? लिफाइलिल फ़िअलिल मुअल्लल बिही, फ़िअल मुअल्लल बिही के फाइल का। जब वो मफ़ऊल लहू फ़िअल मुअल्लल बिही के फाइल का फेल हो, मालूम है दोनों का फाइल भी एक हो। और तीसरी शर्त क्या थी कि दोनों का जमाना एक हो, वो भी जिक्र कर रहे हैं। वह मुकारिनन लहू, और वो मफ़ऊल लहू उस फेल के साथ मिला हुआ हो, फेल वजूदी वजूद में, यानी दोनों के वजूद का जमाना एक हो, फेल मुअल्लल बिही का वजूद और मफ़ऊल लहू का वजूद एक ही जमाने में होना चाहिए। तो तीन शर्तें थी, साहिब काफिया ने उनको एक ही शर्त बना दिया। कैसे कहेंगे? मफ़ऊल लहू के मंसूब होने की शर्त यह है कि जब वो फ़िअल मुअल्लल बिही के फाइल का फेल हो और दोनों का जमाना एक हो। भाई अच्छा भाई, इस सारे को अब देखिए भाई शरा के साथ, भाई शुरू से देखिए। कहते हैं वह शर्तु नस्बिही अय शर्तुन तिसाबिल मफ़ऊल लहू ला शर्तु कौनी लिस्मी मफ़ऊलन लहू। भाई देखिए यहां से साहिब काफिया बयान कर रहे हैं मफ़ऊल लहू के मंसूब होने की शर्त, और क्या कहा कि मफ़ऊल लहू के मंसूब होने की शर्त क्या है? तकदीर लाम है। तवज्जो है, मफ़ऊल लहू के मंसूब होने की शर्त यह है कि वहां लाम मुकद्दर होना चाहिए, लफ्जों में नहीं होना चाहिए, तो यह मंसूब होने की शर्त है। और मैंने आपको बताया कि जमहूर के नजदीक मफ़ऊल लहू मंसूब ही हो सकता है, मजरूर नहीं हो सकता, जबकि साहिब काफिया के नजदीक मफ़ऊल लहू का मंसूब होना जरूरी नहीं। तो जो आगे शर्त जिक्र कर रहे हैं तकदीर लाम, शर्त जिक्र कर रहे हैं तकदीर लाम, जमहूर के नजदीक किसी इसम के मफ़ऊल लहू होने के लिए यह शर्त है कि वहां लाम मुकद्दर हो, यानी लाम का माना वहां मुकद्दर हो। तो जमहूर के नजदीक यह तकदीर लाम किस चीज की शर्त है? किसी इसम के मफ़ऊल लहू होने की यह शर्त है। यह शर्त पूरी होगी तो कोई मफ़ऊल लहू बन सकेगा, यह शर्त पूरी नहीं तो मफ़ऊल लहू नहीं बन सकता। لام کا معنی وہاں مقدر ہونا چاہیے، لام لفظوں میں موجود نہیں ہونا چاہیے. تو جمہور کے نزدیک تقدیر لام کس چیز کی شرط ہے؟ کسی اسم کے مفعول لہو ہونے کی شرط ہے. لیکن صاحب کافیہ کے نزدیک یہ تقدیر لام مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط ہے، کیونکہ مفعول لہو ان کے نزدیک مجرور بھی آ سکتا ہے. تو یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ شرط النصب ہی ای شرط انتصاب المفعول لہ، یعنی مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط ہے یہ، لا شرط کون الاسم مفعولا لہ، یہ کسی اسم کے مفعول لہو ہونے کی شرط نہیں. یعنی وہ اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو صاحب کافی اور جمہور کے درمیان ہے. جمہور کے نزدیک تقدیر لام شرط ہے کس چیز کی؟ کسی اسم کے مفعول لہو ہونے کی. کوئی بھی اسم مفعول لہو بن ہی نہیں سکتا جب تک وہاں لام کا معنی مقدر نہ ہو، فعل بھی ہونا چاہیے وہ، یعنی مصدر بھی ہو اور لام کا معنی وہاں مقدر ہو، لفظوں میں نہیں ہونا چاہیے. تو جمہور کے نزدیک تقدیر لام کس چیز کی شرط؟ کسی اسم کے مفعول لہو ہونے کی شرط. لیکن بتلایا کہ صاحب کافیہ کے نزدیک کسی اسم کے مفعول لہو ہونے کی شرط نہیں ہے تقدیر لام، بلکہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو مجرور ہوتا ہے لام کی وجہ سے وہ بھی مفعول لہو ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ شرط نصب ہی ای شرط انتصاب المفعول لہ، یعنی مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط. لا شرط کون الاسم مفعولا لہ، کسی اسم کے مفعول لہو ہونے کی شرط نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. فالسمن والاکرام فی قولک جئتک للسمن والاکرامک الزائر عنده مفعول لہ علی ما یدل علیہ حده. بھائی دیکھیے یہ دو مثالیں ذکر کر رہے ہیں آگے. جئتک للسمن، میں آپ کے پاس آیا گھی کے لیے، سمن گھی کو کہتے ہیں، سین میم نون سمن گھی کو کہتے ہیں، میں آپ کے پاس گھی کی وجہ سے آیا. اور دوسری مثال ہے ولی اکرامی کا زائر، اس کے ساتھ بھی جئتو کو جوڑ دیں، جئتو کا لی اکرامی کا زائرہ، میں آپ کے پاس آیا اس وجہ سے کہ آپ زیارت کرنے والوں کا اکرام کرتے ہیں. اکرام کرتے ہیں یعنی جو آپ کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، یعنی آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کا اکرام کرتے ہیں. تو دیکھو جمہور کے نزدیک یہ لسمن یہ بھی مفعول لہو نہیں، کیونکہ یہ تو عین ہے، یہ تو فعل ہے ہی نہیں. جمہور کے نزدیک تو مفعول لہو کا فعل ہونا ضروری ہے، یعنی مصدر ہونا ضروری ہے، جبکہ سمن جو ہے یہ تو عین ہے، ایک چیز کا نام ہے. اور نیز جمہور کے نزدیک مفعول لہو کا منصوب ہونا ضروری ہے، جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک منصوب ہونا ضروری نہیں، بلکہ لام وغیرہ کے ساتھ بھی مفعول لہو آ سکتا ہے. تو یہ جو آگے دو مثالیں آ رہی ہیں، جئتو کا لسمنی اور اسی طرح جئتو کا لاکرامی کا زائرہ، یہ دونوں، یہ لسمن اور لاکرامی کا، صاحب کافیہ کے نزدیک یہ دونوں بھی مفعول لہو ہیں. اس لیے کیونکہ صاحب کافیہ کے نزدیک نصب بھی شرط نہیں، لہذا لاکرامی کا اس پر لام جارہ بے شک داخل ہے، لیکن یہ ماقبل کے فعل کی علت بیان کر رہا ہے تو یہ مفعول لہو ہے. اور نی صاحب کافیہ نے مفعول لہو کی کیا تعریف کی؟ کہ وہ اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور کو کیا جائے، تو یہ نہیں بیان کیا کہ وہ اس فعل کا نام ہے. تو لسمن بھی اس تعریف کے اندر داخل ہو رہا ہے. تو صاحب کافیہ کی تعریف لی جائے تو لسمن اور لاکرامی کا جو ان دو مثالوں میں لفظ آ رہے ہیں، یہ دونوں بھی مفعول لہو ہیں، حالانکہ جمہور کے نزدیک یہ دونوں مفعول لہو نہیں. مفعول لہو کے لیے فعل ہونا بھی ضروری اور منصوب ہونا بھی ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے فسمن والاکرام فی قولک جئتک للسمن والاکرامک زائر عنده مفعول لہ علی ما یدل علیہ حده. بھائی میں نے بتایا صاحب کافیہ جمہور سے اختلاف کرتے ہیں، جمہور کے نزدیک مفعول لہو کا فعل ہونا بھی ضروری اور منصوب ہونا بھی ضروری ہے، لیکن صاحب کافیہ نے کیا تعریف کی؟ کہ مفعول لہو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور کو کیا جائے، تو یہ تو عام ہے، یہ تو عین کو بھی شامل ہوا اور فعل کو بھی شامل ہوا. بھائی جس چیز کی وجہ سے بھی فعل مذکور کو کیا جائے، صاحب کافیہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ مفعول لہو ہے. تو جئتو کا لسمنی، میں آیا آپ کے پاس گھی کے لیے، یہ مجیعت کا فعل کس کی وجہ سے کیا گیا؟ سمن کی وجہ سے کیا گیا. اب سمن تو حالانکہ فعل نہیں ہے، وہ تو عین ہے، وہ تو ذات ہے، ایک چیز ہے، لیکن اس کو بھی کیا کہنا پڑے گا صاحب کافیہ کی تعریف کے مطابق؟ مفعول لہو. تو معلوم ہوا صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول لہو عین بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک مفعول لہو ہمیشہ فعل ہوگا، عین نہیں ہو سکتا. तो कहते हैं फसमन वल इकरामु फी कौली का, तो समन और इकराम जो है फी कौली का आपके इस कौल में, जी तू का लिस समनी में आया आपके पास घी के लिए, वल इकरामी का जाइरा इसके साथ भी जी तू को जोड़ दें भाई, वह जी तू का लि इकरामी का जाइरा, जी तू का मैं आपके पास आया, लि इकरामी का बवजह आपके इकराम करने के, अजाइरा ज्यारत करने वाले की, जाहिर इसमें फाइल है ज्यारत से। मसलन आप किसी के से ये कहते हैं जी तू का लि इकरामी का जाइरा, मैं आपके पास इस वजह से आया क्योंकि आप इकराम करते हैं अपनी ज्यारत करने वाले का, जो आपकी ज्यारत करने के लिए आपसे मिलने के लिए आपके पास आता है आप उसका इकराम करते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास आया। जितुका ले इकरामी का, तो देखो इकराम मस्तर है भाई, और आपको मैंने बताया था कि मस्तर भी अपने फेल जैसा अमल करता है, अपने फाइल को रफा देता है और मफूल को नसब देता है, और इकराम करने वाला कौन है, मैं आपके पास आया इस वजह से कि आप इकराम करते हैं, मालूम है मुखातब है इकराम करने वाला, तो ये इकरामी का मस्दर की इजाफत हो रही है काफ जमीर की तरफ, मुखातब की जमीर की तरफ यानी फाइल की तरफ, मुखातब जो है ना वो है इकराम करने वाला, तो इकराम मस्दर की इजाफत किसकी तरफ हो रही है, फाइल की तरफ हो रही है, और अजाइरा ये मफूल भी ही है इकराम के लिए, आप इकराम करते हैं किसका इकराम करते हैं, अजाइरा वो जो ज्यारत करता है यानी आपकी जो ज्यारत करता है। मालूम हुआ ये इकराम मुतकल्लिम का फेल नहीं है, ये मुखातब का फेल है, तवज्जो है, इकराम करने वाला कौन है, मेरा फेल तो मजीअत है जीतु का मैं आपके पास आया हूं, लि इकरामी का क्योंकि आप इकराम करते हैं, अजाइरा किसकी, ज्यारत करने वाले की, तो मैं भी इसीलिए आपके पास आया हूं, फिर आप मेरा भी क्या करेंगे, इकराम करेंगे, तो ये ले इकरामी का ये मस्तर की इजाफत हो रही है अपने फाइल की तरफ, और अजाइरा ये क्या है, मफूल है, आप इकराम करते हैं किसका इकराम करते हैं, अजाइरा जो आपकी ज्यारत करता है। तो बाद मुहशी हजरात ने लिखा कि इकरामी का ये मस्तर की इजाफत है मफूल की तरफ, किसकी तरफ, मफूल की तरफ, इकरामी का इस वजह से कि मैंने आपका इकराम किया, मालूम हुआ मजीअत भी किसकी है, मुतकल्लिम की, और इकराम करने वाला भी कौन है, मुतकल्लिम है, यह बाद मुहशी हजरात ने तकरीर की है, लेकिन यह दुरुस्त नहीं है भाई, दरअसल वो मुहशी दोनों का फाइल एक ही बनाना चाहते हैं, माकबल में जो मजीअत का फेल है उसका फाइल तो कौन है, मुतकल्लिम, आगे इकराम को भी उसी मुतकल्लिम का फेल बनाना चाहते हैं, चुनांचे वो कहते हैं कि ये इकराम की इजाफत अपने मफूल की तरफ हो रही है, हालांकि मैंने बताया ये अपने मफूल की तरफ इजाफत नहीं है बल्कि अपने फाइल की तरफ इजाफत है। शायद शुबा पड़ा मुहशी को जो आगे शर्तें जिक्र थी ना कि फेल मुअल्लल बिही और मफूल लहू दोनों का फाइल एक होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने भी यहां पर दोनों का फाइल एक ही बनाने के लिए क्या कहा कि इकराम की इजाफत है अपने मफूल की तरफ है, हालांकि मफूल की तरफ इजाफत नहीं है बल्कि फाइल की तरफ इजाफत है। वजह यह कि दोनों का फाइल उस वक्त एक होना चाहिए जब आप उस पर नसब पढ़ना चाहते हैं, और यहां तो लफ्जों में लाम मौजूद है, यहां तो दोनों का फाइल एक होना कोई जरूरी नहीं है भाई। बात समझ में आ गई जी, देखिए भाई किताब पर कहते हैं फसम नुवल इकराम फी कौली का, तो समन और इकराम का जो लफ्ज है आपके इस कौल में, जितु का लिसम नी वल इकरामी का जाइरा, ये दो लफ्ज जो हैं ऐन दहू ये साहिब काफिया के नजदीक मफूल उन लहू, ये दोनों क्या हैं, मफूल लहू हैं, अगरचे इनमें से एक ऐन है और एक फेल है, तो ये दोनों मफूल लहू हैं, ऐन दहू मफूल उन लहू, तो ये दोनों लफ्ज जो हैं साहिब काफिया के नजदीक मफूल लहू हैं, अला मा यदुल्लु अलैहि हद्दुहू बिना पर उसके जिस पर इसकी तारीफ दलालत कर रही है। मफूल लहू की क्या तारीफ की थी, मफूल लहू उस चीज का नाम है जिसकी वजह से फेले मस्कूर किया जाए, चाहे वो ऐन हो चाहे फेल हो, दोनों उसके अंदर दाखिल हो गए। आगे देखिए वहादा कमा काल फिल मफूल फी ही, कहते हैं ये इसी तरह है जैसे कि साहिब काफिया ने मफूल फी के बारे में फरमाया था कि इन न शर्त नस्ब ही तकदीर फी, कि मफूल फी के मंसूब होने की शर्त तकदीर फी है। जमहूर के नजदीक तो मफूल फी हमेशा मंसूब होता है, लेकिन साहिब काफिया ने क्या फरमाया था, मफूल फी के منصوب ہونے کی شرط تقدیر فی ہے، معلوم ہوا کہ منصوب نہ ہو بلکہ فی لفظوں میں ہو، پھر بھی وہ کیا ہے صاحب کافیہ کے نزدیک؟ مفعول فی ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح اختلاف کیا جمہور نحویوں سے، تو کہتے ہیں وہذا ایضا خلاف اصطلاح القومی، اور یہ بھی ان لوگوں کی اصطلاح کے خلاف ہے، یعنی صاحب کافیہ کی یہ بات بھی جمہور نحویوں کی اصطلاح کے خلاف ہے. بھائی آگے دیکھیے، تقدیر اللامی مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر لام ہے، کہ لام وہاں مقدر ہونا چاہیے لفظوں میں نہیں، کیونکہ اگر لفظوں میں آئے گا پھر تو جر پڑنا واجب ہوگا. تو کہتے ہیں تقدیر اللامی کے مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر لام ہے، لأنها اذا ظهرت لزم الجر، اس لیے کیونکہ جب لام ظاہر ہوگا یعنی لفظوں میں ہوگا تو لزم الجر، پھر تو جر لازم ہوگا. بھائی وخص اللام بالذکر لأنها الغالب في تعليلات الافعال. بھائی یاد رکھو، علت بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں لام کثرت سے استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ لام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بعض حروف جو ہیں وہ بھی علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے من ہے، با ہے، یا جیسے فی ہے، یہ سب بھی علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو صاحب کافیہ نے کیا کہا، وہ شرط نصب ہی تقدیر اللامی، مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط کیا ہے کہ وہاں لام مقدر ہونا چاہیے. بھائی مین مقدر ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں آپ نے کہا، یا فی مقدر ہونا چاہیے یا با. تو باقی حروف جو علت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو صاحب کافیہ نے ذکر نہیں فرمایا، صرف یہ کہا کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر لام ہے، صرف لام کو ذکر فرمایا. تو اس کی وجہ بتائیں گے کہ بھائی چونکہ لام سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے لہذا لام ہی مقدر ہوگا، باقی مقدر نہیں ہوں گے. بھائی تو کہتے ہیں وخص اللام بالذکر، اور صاحب کافیہ نے لام کو خاص کیا ذکر کے ساتھ، یعنی خاص طور پر لام کا ذکر فرمایا، لأنها الغالب، اس لیے کیونکہ یہ لام جو ہے یہ غالب ہے فی تعلیلات الافعال، افعال کی علت بیان کرنے میں اسی کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، فلا یقدر غیرها، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور حرف مقدر نہیں ہوگا. من من اول با او فی، من کے ذریعے بیان ہے، فلا يقدر غيرها، اس لام کے علاوہ کوئی اور لفظ مقدر نہیں ہوگا. بھائی غیرها لام کے علاوہ کیا مراد ہے اس سے، تو آگے بیان چاہیے، تو من کے ذریعے بیان کیا، من من یعنی کہ لفظ من، اول با یا با، او فی یا لفظ فی، یہ مقدر نہیں ہوں گے. مع انها من دواخل المفعول له، باوجود اس کے کہ یہ بھی مفعول له میں داخل ہونے والی چیزیں ہیں. کا قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہاں جو یہ من آیا نا، یہ علت بیان کرنے کے لیے ہے. خاشعا بھائی خشوع سے ہے، خشوع کا معنی ہے جھکنا، عاجزی کا اظہار کرنا. متصدعا تصدع کا معنی ہے پھٹنا، پھٹنا. اور خشیت اللہ، خشیت کہتے ہیں خوف کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو البتہ آپ دیکھتے اس پہاڑ کو کہ خاشعا وہ جھکا جا رہا ہے، متصدعا پھٹا جا رہا ہے، من خشية الله اللہ کے خوف سے. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے جھک رہا ہے اور پھٹ رہا ہے. بھائی تو دیکھو، خاشعاً وہ جھکا جا رہا ہے، متصدعاً پھٹا جا رہا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو یہاں من کس لیے آیا؟ علت بیان کرنے کے لیے آیا. معلوم ہوا عربی زبان میں لام کے علاوہ کبھی من بھی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اسی طرح وقولہ تعالی، اللہ تعالی کا یہ قول ہے، فبظلم من الذین هادوا حرمنا، فبظلم، یہ جو با ہے یہ علت بیان کرنے کے لیے ہے، فبظلم ظلم کرنے کی وجہ سے، من الذین هادوا ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی ہوئے، الذین هادوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا. یاد رکھو بنو اسرائیل پر، یہودیوں پر بہت سی حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے. वो हद से ज्यादा जुल्म करने वाले थे, तो बहुत सी हलाल चीजों को भी उन पर अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया। तो वही अल्लाह बयान फरमा रहे हैं, फबी जुल्म मिन अल्लदीना हादू, कि वो लोग जो यहूदी हुए उनकी जानिब से जुल्म करने की वजह से हर्रम ना हमने हराम करार दे दिया। तो ये हराम करार देने की इल्लत बयान की जा रही है किसके जरिए, बेजुल्मिन हमने हराम करार दिया, किस वजह से, बेजुल्मिन उनके जुल्म करने की वजह से। तो ये बा यहां किस लिए आई, इल्लत बयान करने के लिए। इसी तरह व कौली ही अलैहि सलाम, और जैसे कि हुजूर अलैहि सलाम का कौल है, इन नम्रअतन दखलतिन नारा फी हिर्रतिन, इन नम्रअतन के एक औरत जो है, दखलतिन नारा वो जहन्नुम में दाखिल हो गई, फी हिर्रतिन ऐली अजली हिर्रतिन, एक बिल्ली की वजह से। तो यहां पर फी किस लिए आया, इल्लत बयान करने के लिए कि एक औरत जहन्नुम में दाखिल हुई एक बिल्ली की वजह से, कोई औरत थी उसने किसी बिल्ली को बांध दिया था, हदीस में आता है, और फिर ना उसको कुछ खाने पीने को दिया और ना उसको फिर खोला, तो उसी जगह बांधे बांधे भूख और प्यास की वजह से वो बिल्ली मर गई भाई। तो इस वजह से उस औरत को जहन्नम में दाखिल किया गया भाई। तो यहां देखो वो औरत जहन्नम में दाखिल हुई, फी हिर्रतिन एक बिल्ली में, यानी एक बिल्ली की वजह से। तो इल्लत बयान करने के लिए क्या लाया गया, फी को लाया गया भाई। तो मालूम हुआ इल्लत बयान करने के लिए गालिब इस्तेमाल तो लाम का है, लेकिन कभी मिन और फी और बा को भी इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं वलम्मा काना तकदीरुल लाम इबारतन अन हज़्फिहा, यह तमहीद है आगे आने वाले मतन के लिए भाई। देखिए जरा आगे आने वाला मतन देखें, व इन्नमा यजूज़ हज़्फुहा, और जायज है लाम का हज़्फ, जायज है लाम का हज़्फ, जायज है भाई। साहिब काफिया के पास अल्फाज कम होते हैं, वो मुख्तसर से मुख्तसर लफ्जों में लंबी से लंबी बात करना चाहते हैं, तो यहां उनको सिर्फ यूं कहना चाहिए था, वह इन नमा यजूजू हज़्फुहा को न लाते, सिर्फ इन नमा यजूजू कहते और यजूजू के अंदर जमीर राजे कर देते, पीछे तकदीर लाम का जिक्र आया है। क्या कहा, व शर्त नस्ब ही तकदीर उल्लामी, मफूल लहू के मनसूब होने की शर्त तकदीर लाम है, व इन नमा यजूज, और तकदीर लाम जायज है। हुआ जमीर तकदीर लाम की तरफ लौटा देते कि तकदीर लाम जायज है कब, इजाकान फ़िअलन लिफ़ाइलिल फ़िअलिल मुअल्लल बिही व मुक़ारिनन लहू फिल वजूद। तो साहिब काफिया को यह हज़्फुहा का लफ्ज नहीं लाना चाहिए था, जमीर राजे कर देते तकदीर लाम की तरफ, तो यह हज़्फुहा का लफ्ज वो क्यों लाए, यह तो इबारत लंबी हो गई। और याद रखो फसीह बलीग आदमी जब जाहिर से उदूल करे तो उसमें कोई नुक्ता होता है। जाहिर तो क्या था, जमीर लानी चाहिए थी, जाहिर तो क्या था, जमीर लानी चाहिए थी, बात वाजह थी बिल्कुल, कोई इश्काल ही नहीं था, लेकिन जमीर के बजाय उदूल किया किस चीज की तरफ, हज़्फुहा का लफ्ज लेकर आए, तो इस साहिब काफिया ने इस जाहिर से उदूल किया दूसरी इबारत की तरफ, उसकी वजह क्या है, यकीनन उसमें कोई नुक्ता होगा। तो यहां क्या नुक्ता है, अब वो नुक्ता बयान करने लगे हैं साहिब जामी भाई। भाई देखिए एक है जिक्र और एक है तकदीर भाई, एक तो यह है कि किसी लफ्ज को जिक्र किया जाए और एक यह है कि किसी लफ्ज को मुकद्दर कर लिया जाए, दो चीजें हैं। तो जिक्र के अंदर जब मसलन यहां पर लाम है, तो जो जिक्र लाम है, लाम का जिक्र करना यह है असल, यह क्या है, असल है कि जिक्र किया जाए या हजफ किया जाए, जिक्र असल है और हजफ खिलाफुल असल है, लिहाजा हजफ के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, करीना चाहिए होता है। तो यहां पर एक है जिक्र लाम, एक है तकदीर लाम। जिक्र लाम असल है और जिक्र लाम में क्या क्या होगा, उस लाम को लफ्जों में भी बाकी रखा जाएगा और नीयत में भी उसका इरादा है, यानी उसके माना का भी इरादा है। ये अपने सामने जरा लिखें फिर आपको बात समझ में आएगी। लिखिए भाई जिक्र लाम, जिक्र लाम जी, इससे थोड़ा सा फासला देकर, एक लफ्ज जितना फासला दें और आगे लिखें। जिक्र लाम में कितनी चीजें हैं भाई, दो चीजें होंगी, वो लिखें, लिखें इबका उन फिल लफ्जी व नीयती, इबका उन फिल लफ्जी वन नीयती, वन नीयती। जिक्र लाम में कितनी चीजें होंगी, दो चीजें, कौन कौन सी, इबका फिल लफ्ज यानी लफ्जों के अंदर भी लाम को आप लेकर आएंगे, वह इबका उन फिन नीयति और नीयत में भी होगा यानी उसका इरादा भी होगा यानी उसका माना भी मुराद होगा। तवज्जो है। तो जिक्र लाम में कितनी चीजें, दो चीजें, इबका फिल लफ्ज लफ्जों में भी बाकी हो और नीयत में भी बाकी हो यानी उसके माना भी मुराद हो उसका भी इरादा किया जाए। और नीचे लिखिए तकदीर लाम, जिक्र लाम के नीचे लिखिए तकदीर लाम, तकदीर लाम। इसके आगे लिखिए थोड़ा सा फासला देकर हज़्फ़ुन अनिल लफ्ज़ी, हज़्फ़ुन अनिल लफ्ज़ी व इबका'उन फिन नियति, व इबका'उन फिन नियति। लिख लिया जी। तो जिक्र लाम में कितनी चीजें, दो चीजें। तवज्जो है। जिक्र लाम में कितनी चीजें, दो चीजें, एक तो वो इबका फिल लफ्ज लफ्जों में भी वो बाकी हो और वह नीयति और नीयत में भी बाकी हो यानी उसके माना का भी इरादा किया जाए। और तकदीर लाम के अंदर भी दो चीजें हैं, क्या कि लफ्जों से हजफ कर लिया जाए लेकिन वह इबका उन फिन नीयति नीयत में वो बाकी हो यानी उसका माना मुराद हो। तो जिक्र लाम में कितनी चीजें, दो, कौन कौन सी, लफ्जों में भी बाकी हो और नीयत में भी बाकी हो। और तकदीर लाम में कितनी चीजें, दो चीजें, कौन कौन सी, के लफ्जों से हजफ हो लेकिन नीयत में बाकी हो। भाई तो देखो बात समझ में आ गई। अब देखो अगर साहिब काफी इबारत यूं लाते व इन नमा यजूज़ इज़ा काना यानी जमीर लौटा देते तकदीर लाम की तरफ, अगर वो जमीर लौटा देते तकदीर लाम की तरफ तो यूं मालूम होता कि यह तकदीर लाम की शर्त बयान हो रही है। तो यूं मालूम होता आगे तकदीर लाम की यह शर्त है और तकदीर लाम में तो कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, कौन कौन सी, लफ्जों से हजफ और नीयत में बाकी रखना। तो यूं मालूम होता कि शायद यह दोनों की शर्त बयान हो रही है, हालांकि नीयत में बाकी रखना यह तो असल के मुताबिक है। जिक्र में कितनी चीजें थी, जिक्र में दो चीजें थी, कौन कौन सी, कि लफ्जों में भी बाकी हो और नीयत में भी बाकी हो। मालूम हुआ नीयत में बाकी होना यह तो असल के मुताबिक है, असल भी जिक्र है ना। तवज्जो है। एक है जिक्र लाम, जिक्र लाम में दो चीजें हैं कि लफ्जों में भी जिक्र हो और नीयत में भी हो, और एक है तकदीर लाम। तकदीर लाम में क्या है, लफ्जों से तो हजफ है लेकिन नीयत में बाकी हो। तो ये जो नीयत में बाकी है ये तो जिक्र के अंदर भी था, ये तो, और जिक्र तो असल था, और असल के लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं होती। असल के लिए जब खिलाफुल असल हो फिर उसके लिए शर्त की जरूरत पड़ती है। तो असल के लिए किसी दलील या शर्त वगैरह की जरूरत नहीं होती, और जो खिलाफुल असल हो उसमें शर्त या करीने वगैरह की जरूरत पड़ती है। भाई तो यहां पर तकदीर लाम के अंदर दो चीजें हैं, कौन कौन सी, हजफ अनिल लफ्ज भी और इबका फिन नीयत भी। और इबका फिन नीयत जो है इसके अंदर वो तो असल के अंदर भी था, मालूम है ये इबका फिन नीयत ये तो असल के मुताबिक है, इसके लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं। इसके लिए सिर्फ क्या चीज खिलाफुल असल है, हज़फ आने लफ्ज जो है वो खिलाफुल असल है, उसके लिए शर्त वगैरह की जरूरत है। तो अगर साहिब काफिया यजूज़ू की जमीर तकदीर लाम की तरफ लौटा देते तो फिर तो इबारत ये बन जाती कि तकदीर लाम की ये शर्त है, और तकदीर लाम में तो दो चीजें हैं, हज़फ आने लफ्ज भी है और इबका फिर नीयत भी है, तो गोया ये दोनों की शर्त हो जाती। हालांकि ये दोनों की शर्त नहीं है, क्योंकि इबका फी नीयत वो तो असल के मुताबिक है, उसके लिए तो किसी शर्त की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या चीज खिलाफुल असल थी, हजफ था, तो ये तो आगे सिर्फ हजफ की शर्त जिक्र हो रही है, इसीलिए जमीर जो है तकदीर लाम की तरफ नहीं लौटाई बल्कि क्या ले आए, हज़्फ़ुहा, कि ये हज़्फ़े लाम की शर्त है, इबका फी नीयत की शर्त नहीं, क्योंकि वो तो असल के मुताबिक है। तो कहते हैं वलम्मा कान तकदीरुल लाम इबारतन, जब तकदीर लाम जो है वो इबारत है। भाई इधर देखिए, इधर देखिए, तकदीर लाम कितनी चीजों से इबारत है, दो चीजों से, एक तो हजफ अनिल लफ्ज और इबका फिन नीयत। तो देखो कहते हैं वलम्मा कान तकदीरुल लाम इबारतन, जब तकदीर लाम वो इबारत है, अन हज़्फ़िहा अनिल लफ्ज़ व इबका इहा फिन नीयति, उस लाम को लफ्जों से हजफ करना वह इबका इहा फिन नीयति, और नीयत में बाकी रखना, इससे तकदीर लाम इबारत है। वह कानल असलु इबका अहा फिल लफ्ज व नीयति, और असल जो है वो तो उसको लफ्जों में भी बाकी रखना और नीयत में भी बाकी रखना। फला हाजत फी इबका इहा फिन नीयति इला शर्तिन, लिहाजा इबका इलाम फिन नीयत जो है ये मोहताज नहीं है किसी शर्त का, ये तो किसी शर्त का, तो कहते हैं फला हाजत फी इबका इहा फिन नीयति इला शर्तिन, बस मोहताज नहीं है इस्लाम को बाकी रखना नीयत में इला शर्तिन, ये किसी शर्त का, ये किसी शर्त का मोहताज नहीं। बलिल हाजतु इलैही इन्नमा यकूनु फी हस्फिहा मिनल लफ्जी, बल्कि शर्त की तरफ जो हाजत है वो इन्नमा यकूनु फी हस्फिहा मिनल लफ्जी, वो तो सिर्फ उसको लफ्जों से हजफ करने में है। वलिजा काला, और इसी वजह से मातिन ने कहा व इन नमा यजूजु हस्फुहा, इसलिए हस्फुहा का लफ्ज लेकर आए। वलम यक्तफी बिरजाई जमीर फाइली इला तकदीर लामी, और इसी वजह से इक्तफा नहीं फरमाया फाइल की जमीर लौटाते हुए इला तकदीर लामी, तकदीर लाम की तरफ, इस पर इक्तफा नहीं फरमाया। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, फयजूजु हस्फुहा कमा यजूजु जिक्रुहा, बस इस्लाम का हजफ भी जायज है जैसे कि इसका जिक्र जायज है। जैसे कि भाई देखो ना, पीछे मतन में आया व इन नमा यजूज हस्फुहा, लाम का हजफ जायज है जो आगे शर्त जिक्र करने लगे हैं। जब यह शर्त पूरी है तो उस वक्त यजूज हस्फुहा, लाम का हजफ जायज है, वाजिब नहीं है। जब लाम का हजफ जायज है तो आप चाहें हजफ कर दें और आप चाहें जिक्र कर दें, यही बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं फयजूजु हजफुहा कमा यजूजु जिक्रुहा, बस लाम का हजफ जायज है जैसे कि उसका जिक्र भी जायज है। इजा कान अल मफूल लहू फेलन, जब मफूल लहू फेल हो, जब मफूल लहू क्या हो, फेल हो। पहली शर्त आ गई, शर्त तो एक ही बना दी साहिब काफिया ने, लेकिन दरअसल कितनी शर्तें हैं, ये तीन हैं, उन तीनों को देखो बयान करेंगे। इजा कानल मफूल लहू फ्यालन, जब मफूल लहू फ्याल हो, कहते एहतराज उन अम्मा इजा कान आयनन, ये एहतराज है उस मफूल लहू से जिस वक्त वो कोई आयन हो, कोई जात हो। नहु जितु का लिस्समनी, मैं आपके पास घी के लिए आया। अब यहां पर ये जो लिस्समन है, ये इससे आप लाम को हजफ नहीं कर सकते क्योंकि ये फेल नहीं है, ये तो आयन है, एक चीज है जिसका अपना अलग वजूद है। किस चीज की शर्त जिक्र हो रही है, लाम को हजफ करने की। तो जितु का लिस्समन, इससे लाम हजफ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पहली शर्त क्या थी कि वो मस्दर होना चाहिए और ये समन ये तो मस्दर नहीं है, ये तो आयन है। जब ये, जब वो मफूल लहू फेल हो, लिफाइल फेल मुअल्लल बिही, फेल मुअल्लल बिही के फाइल के लिए, क्या माना, जब मफूल लहू फेल हो, फेल मुअल्लल बिही के फाइल के लिए, यानी दोनों का फाइल एक होना चाहिए, यही बयान कर रहे हैं। इत्तहद फाइलुहू व फाइलु आमिलिही, यानी उस मफूल लहू का फाइल और मफूल लहू के आमिल का फाइल मुत्तहिद हो। भाई मफूल लहू में आमिल क्या होता है, जरबतुहु तादीबन, ये तादीबन को नसब किसने दिया, जरबतु ने, तो यूं कह लो कि मफूल लहू और फेले मुअल्लल बिही का फाइल मुत्तहिद हो, या यूं कह लो मफूल लहू और उसके आमिल का फेल मुत्तहिद हो, मफूल लहू और उसके आमिल का फेल मुत्तहिद हो, बात एक ही है। तो कहते हैं इत्तहद फाइलुहू व फाइलु आमिलिही, यानी मफूल लहू का फाइल और उसके आमिल का फाइल मुत्तहिद हो। एहतराज उन अम्मा इदा काना फ़िअलन लिगैरिही, यह एहतराज है उस मफूल लहू से जिस वक्त वो किसी दूसरे का फेल हो। नहु जितुका लिमजीई का इयाया, जितुका मैं आपके पास आया, लिमजीई का बवजह आपके आने के, इयाया मेरे पास, जितु का मैं आपके पास आया, लिमजी का इयाया, इस वजह से कि आप मेरे पास आए थे, यानी आप मेरे पास आए थे इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अब देखो माकबल में फेल क्या है, जितु का, ये मुतकल्लिम का फेल है, और लाम के बाद क्या है, लिमजी का, आपका आना, यानी आप आए थे, तो लाम के मां बाद जो मजियत है वो किसकी है, मुखातब की है। तो देखो दोनों का फाइल अलग अलग है, मैं आपके पास आया इसलिए क्योंकि आप मेरे पास आए थे, तो मैं आपके पास आया, ये देखो मुतकल्लिम का आना है, और क्योंकि आप मेरे पास आए थे, ये देखो मुखातब का आना है, तो दोनों का फाइल एक नहीं है, लिहाजा यहां भी शर्त पूरी नहीं। लिहाजा यहां, लिहाजा जिअतुका लिमजीइका इयाया, यहां लिमजीइका से लाम को हजफ करके इस पर नसब पढ़ना जायज नहीं, क्योंकि इसके अंदर दूसरी शर्त पूरी नहीं है। आगे देखिए, वह मुकारिनन लहू ऐ लिल फिअलिल मज़कूरी, यहां जमीर का मर्जा बतला दिए कि वो मफूल लहू मिला हुआ हो उसके साथ, भाई किसके साथ, ऐ लिल फिअलिल मज़कूरी, फेले मज़कूर के साथ, तो वो मफूल लहू मिला हुआ हो फेले मज़कूर के साथ, फिल वजूदी, वजूद के अंदर, यानी दोनों के वजूद का, दोनों के पाए जाने का जमाना एक हो, बिअय्यत्तहिदा ज़मानु वजूदिहिमा, ये बात तस्वीरिया है, साहिब जामी सूरत बयान फरमा रहे हैं कि दोनों का जमाना मिला हुआ हो उसकी क्या सूरत हो सकती है, उसकी क्या सूरत हो सकती है, आपको बतलाएंगे कि दोनों का जमाना इकट्ठा पाया जाए, इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत यह कि दोनों का जमाना बिल्कुल मुत्तहिद हो, यानी जितना एक का जमाना है उतना ही दूसरे का जमाना है और वो एक ही जमाने के अंदर दोनों हैं, जबकि एक सूरत यह है कि दोनों में से एक का जमाना यानी फेल या मफूल लहू, फिर इन दोनों में से एक का जमाना तवील हो और दूसरे का जमाना उस जमाने का जुज हो, उसका बाज हो। भाई जैसे जरब तुहू तादीबन, देखो ये जरब और तादीब का जमाना एक है, इसलिए क्योंकि यहां एक ही फेल है, आप किसी की पिटाई करते हैं वही फेल बाई लिहाज कि इसे दूसरे को तकलीफ हो रही है उसी को जरब कहा, और वही फेल बाई लिहाज कि उसे दूसरे की इसलाह हो रही है और वह अच्छे अखलाक सीखता जा रहा है तो उसको तादीब कहा। तो जब एक ही फेल है, सिर्फ फर्क एतबारी है कि एक में आपने तकलीफ का एतबार किया दूसरे में इसलाह का एतबार किया, तो सिर्फ एतबारी फर्क है, वरना एक ही फेल है। जब एक ही फेल है फिर तो एक ही जमाना हुआ, दोनों का जमाना क्या हो गया, मुत्तहिद हो गया, किसी एक का भी जमाना लंबा नहीं, दोनों का बिल्कुल जमाना मुत्तहिद है क्योंकि फेल ही एक है। और कभी कभार फेल अलग अलग होंगे तो फिर एक का जमाना हो सकता है दूसरे के जमाने से तवील हो, जैसे काद तो अनिल हर भी जुबनन, मैं जंग से बैठा बुजदिली की वजह से, तो ये मफूल लहू जो है जुबनन बुजदिली, देखो इसका जमाना तवील है, कोई शख्स बुजदिल होता है तो वो जंग से बैठने से पहले भी बुजदिल था, जंग से बैठने के दौरान भी बुजदिल था और उसके बाद भी बुजदिल है, तो देखो जुबन और बुजदिली का जमाना तवील है और जंग से बैठना ये उस जमाने का बाज है। भाई अलबत्ता जब जंग से बैठा था बुजदिली उस वक्त भी थी, तो देखो दोनों का जमाना इकट्ठा है, मिला हुआ है, भाई दोनों इकट्ठे एक ही जमाने में देखो पाए जा रहे हैं। तो देखो इसके अंदर जंग से बैठना ये तो किसी एक वक्त में हुआ है, लेकिन बुजदिली का जमाना तवील है, तो कुऊद अनिल हर्ब का जमाना बाज है मफूल लहू के जमाने का, और कभी इसका बरअक्स होगा, फेल का जमाना लंबा होगा और मफूल लहू का जमाना उसका बाज होगा। जैसे जैसे ये आगे मिसाल जिक्र करेंगे, शहीद तुल हरबा ईका अन ले सुलह बैन अल फरीकैन, ये एक दो तीन सत्रों के बाद आ रहा है, शहीद तुल हरबा मैं उस जंग में हाजिर हुआ, ईका अन ले सुलह सुलह करवाने के लिए, बैन अल फरीकैन उन दो फरीकों में, मैं उन दो फरीकों के दरमियान सुलह करवाने के लिए जंग में हाजिर हुआ। तो यहां देखो जंग के अंदर हाजिर होना इसका जमाना तवील है, और इसी जंग की हाजिरी के दौरान किसी एक वक्त में वो सुलह करवाएगा, तो वो सुलह करवाने का जमाना जंग में हाजिर होने के जमाने का बाज है, उसका जुज है भाई, लेकिन जिस वक्त सुलह करवा रहा है उस वक्त भी जंग में हाजिर होना पाया जा रहा है, तो दोनों इकट्ठे हो गए वजूद के एतबार से। बात समझ में आ गई, तो कितनी सूरतें हो गई जमाना मिला हुआ होने की, दो सूरतें, या तो दोनों का जमाना बिल्कुल मुत्तहिद होगा या दोनों में से एक का जमाना तवील होगा और दूसरे का जमाना उसका बाज होगा, वही बयान कर रहे हैं। देखिए भाई कहते हैं भी अय्यत्तहिदा, मैंने बतलाया ये बात तस्वीरिया है जिसके लिए सूरत बयान कर रहे हैं कि जमाना मिला हुआ होने की क्या सूरत हो सकती है। कहते हैं भी अय्यत्तहिदा ज़मानु वजूदिहिमा, बई सूरत के दोनों के वजूद का जमाना मुत्तहिद हो, नहु ज़रबतुहु तादीबन, इस ज़मान ज़र्ब व तादीब वाहिदुन, इसलिए क्योंकि ज़र्ब और तादीब का जमाना एक है, इस ला मुगायरत बैनहुमा, इसलिए क्योंकि इन दो अफ़आल में कोई मुगायरत है ही नहीं, एक ही फेल है, बस नाम अलग अलग है अलग एतबार से। भाई इज़ला मुगायरत बैनहुमा, इसलिए क्योंकि इन दोनों अफ़ाल में कोई मुगायरत नहीं है, इल्ला बिल एतबारी, मगर एतबारी तौर पर, दोनों में मुगायरत सिर्फ एतबारी है, उसी ज़र्ब में आपने यह एतबार किया कि तकलीफ हो रही है दूसरे को तो उसका नाम ज़र्ब है, और यह एतबार किया कि उसको उसकी इस्लाह हो रही है तो वही तादीब है। बात समझ में आ गई। एतबारी चीज वो होती है जो मोतबिर के एतबार पर मौकूफ हो, मोतबिर एतबार करता है तो वो चीज है, मोतबिर एतबार नहीं करता तो वो चीज नहीं है। तो यहां पर देखा जाए तो एक ही फेल है, अगर आप ये चीजों का ये एतबार नहीं करते दो चीजों का तो फिर दो फेल है ही नहीं, फेल तो है ही एक ज़र्ब वाला फेल है, लेकिन अगर आप यह एतबार करते हैं कि दूसरे को तकलीफ हो रही है तो यह ज़र्ब है, और यह एतबार करते हैं कि उससे उसकी इस्लाह हो रही है तो यह तादीब है। तो सिर्फ एतबारी फर्क है, तो फेल एक ही है, तो जमाना मुत्तहिद हुआ, फेल अलग अलग है ही नहीं कि एक जमाना किसी का ज्यादा हो जाए या कम हो जाए या अलग अलग हो जाए। अव यकून जमान वजूदी अहदिहिमा बाज़म मिन ज़मानी वजूदिल आखरी, या दोनों में से एक के वजूद का जो जमाना है वो बाज़ होगा दूसरे के वजूद के जमाने का, यानी एक का जो जमाना है वो दूसरे के जमाने का बाज़ होगा। नहव क़ाअतु अनिल हर्बि जुबनन, मैं जंग से बैठा बुजदिली की वजह से। फइन नज़मान अल्फ़िअल अनिल क़ुउद अनिल हर्बि बाज़ु ज़मानिल मफ़ऊलि लहू अनिल जुबना। इस फइन, देखो तर्जमा सुनो, फइन न जमान अल्फिअली, इसलिए क्योंकि फेल का जमाना जो है कौन सा फेल, अनिल कुऊद अनिल हर्बी, यानी जंग से बैठना, ये जंग से बैठना है इस फेल का जो जमाना है, बाजु जमान अल मफूल लहू, ये मफूल लहू के जमाने का बाज है। मफूल लहू क्या, अनिल जुबना यानी जुबन, जुबन के जमाना तवील है तो, और कुऊद अनिल हर्ब जो है ये इस जुबन के जमाने का बाज है। वह नहव शहीदतुल हर्ब इकान लिसुल्ह बैन अल फरीकैनी, मैं उस जंग में हाजिर हुआ सुलह करवाने के लिए उन दो फरीकों के दरमियान। फइन न जमान अल मफूल लहू अनी इका सुलह बाजु जमान अल फिअल अनी शुहूद अल हर्ब, कहते हैं फइन ज़मान अल मफ़ऊल लहू, इसलिए क्योंकि मफ़ऊल लहू का जो जमाना है, भाई मफ़ऊल लहू क्या, कहते हैं आनी इक़ा सुल्ह यानी सुलह करवाना, तो कहते हैं फइन ज़मान अल मफ़ऊल लहू आनी इक़ा सुल्ह, इसलिए क्योंकि मफ़ऊल लहू यानी सुलह करवाने का जो जमाना है, बाज़ु ज़मान अल फ़िअल आनी शुहूद अल हर्ब, ये फेल यानी शुहूद हर्ब के जमाने का बाज है। वहतराजा बिजा लिकल कैदी अम्मा इजा लम यकुम मुकारिनन लहू फिल वजूदी, कहते हैं ये जो कैद लगाई ना मतन में कि दोनों का जमाना मुकारिन होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, भाई इस कैद के जरिए इस तरह की मिसालों से एहतराज किया। आगे देखो मिसाल आ रही है, अकरम तु कल यौमा लि वादी बिजा लिका अमसी, अकरम तु कल यौमा, मैंने आज के दिन आपका इकराम किया, लिवादी, ये या मुतकल्लिम की तरफ वाद मस्दर की इजाफत हो रही है, लिवादी इस वजह से कि मैंने वादा किया था, बिजालिका इस इकराम का, अमसी गुज़श्ता कल, भाई गुज़श्ता कल आपने किसी से वादा किया था कि मैं आपका इकराम करूंगा और आज फिर आप उसका इकराम करते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, अकरम तु कल यौमा, मैंने आज के दिन आपका इकराम किया, मालूम हुआ ये इकराम कब किया है, आज के दिन, और आगे मफूल लहू जिक्र हो रहा है, लिवादी वो जो मेरा वादा था, बिजालिका इस इकराम के बारे में, अमसी गुज़श्ता कल, और तो वो वादा कब किया था, गुज़श्ता कल, इकराम जो फेल है उसका जमाना है आज का, और वो जो मफूल लहू है लिवादी उसका जमाना है गुज़श्ता कल, तो देखो दोनों का जमाना एक नहीं, जब दोनों का जमाना एक नहीं तो लिवादी से लाम को हजफ करके इस पर नसब पढ़ना जायज नहीं, क्योंकि नसब के लिए तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है और उसमें एक शर्त यह थी कि दोनों का जमाना एक ही हो। व इन नमश्तुरित हादिहि शराइतु लिअन्नहु बिहादिहि शराइति युशबिहुल मस्दर फयतअल्लकु बिल फिअल बिला वासिततिन तअल्लुकल मस्दर बिही, भाई ये शर्तें क्यों लगाई गई कि मफूल लहू के मंसूब होने के लिए तीन शर्तें हैं कि वो मस्दर होना चाहिए और फिअल मुअल्लल बिही का फाइल और इसका फाइल मुत्तहिद होना चाहिए और दोनों का जमाना एक होना चाहिए, कहते हैं वजह यह कि इन तीन शर्तों की वजह से इसकी मुशाबहत आ जाएगी मफूल मुतलक के साथ, मफूल लहू की मुशाबहत आ जाएगी किसके साथ, मफूल मुतलक के साथ, और मफूल मुतलक वो तो फेल का जुज होता है, जरब तू जरबन, ये जरबन क्या है, ज़रबतु का जुज है। भाई फेल के अंदर कितनी चीजें होती हैं, फेल का माना कितनी चीजों से मुरक्कब होता है, तीन चीजों से, मसदर, जमाना और निस्बत इलल फाइल। तो लिहाजा मफूल मुतलक के साथ फेल का ताल्लुक बड़ा गहरा है, हत्ता कि वो फेल का जुज है, तो फेल उसके अंदर बराह रास्त अमल करता है और उसको नसब दे देता है, किसी हरफे जर वगैरह की जरूरत नहीं। तवज्जो है, ज़रबतु ज़रबन, ये ज़रबन मफूल मुतलक है तो ये फेल का जुज है, इसलिए फेल इसको नसब दे देता है। तो मफूल लहू के अंदर अब ये शर्तें पूरी होंगी तो इसकी मुशाबहत किससे आएगी, मफूल मुतलक से, और मफूल मुतलक तो फेल का जुज है, उसको फेल बराह रास्त नसब दे सकता है, तो अब मफूल लहू को भी दे सकेगा और वो मंसूब हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें मफूल मुतलक में भी हैं। ज़रबतुहु ज़रबन, ज़रबतुहु ज़रबन, ये ज़रबन मफूल मुतलक है। तो देखो ये मस्तर भी है, पहली शर्त। दूसरा, ये ज़रबन और ज़रबतु दोनों का फाइल एक ही है, क्योंकि ये वही ज़रब तो है, और नीज दोनों का जमाना भी एक ही है, क्योंकि ज़रबन कोई अलग चीज ही नहीं है, वही ज़रबतु के अंदर जो ज़रब था उसी को निकाल कर आगे ले आए। बात समझ भी आ रही है कि नहीं? ज़रबतु हु ज़रबन, ये ज़रबन मफूल मुतलक है, तो ये मसदर भी है, इसका फाइल और मकबल वाले फेल का फाइल एक ही है, और नीस दोनों का जमाना भी एक ही है, क्योंकि ये कोई अलग चीज ही नहीं है, तो उसी फेल का जुज है, तो फाइल भी दोनों का एक होगा, जमाना भी एक होगा, और ये मस्दर भी है। तो मफूल लहू के अंदर अब ये तीन चीजें आ गईं, वो मस्दर भी है और फेल मुअल्लल बिही का, और इसका फाइल एक भी है, और नीस इन दोनों का जमाना भी एक है, तो इसकी मुशाबहत आ गई किसके साथ, मफूल मुतलक से, और मफूल मुतलक को तो फेल बराह रास नसब दे सकता है, तो मफूल लहू को भी अब वो नसब दे देगा। बात समझ में आ गई? हां, अगर इन चीजों में से किसी में खलल आ गया, ये जो तीन शर्तें थी इनमें खलल आ गया, इनमें से कोई शर्त पूरी न हुई, तो फिर इसकी मुशाबहत मफूल मुतलक से न रहेगी। जब मफूल मुतलक से न रहेगी फिर इसको फेल नसब नहीं दे सकता, फिर लाम को लफ्जों में ही लाना पड़ेगा, आप लाम को हजफ करके इसे मनसूब नहीं पढ़ सकते। कब? जब इन चीजों में से किसी के अंदर खलल आ जाए। तो कहते हैं वह इन नमश्तुरीता हादही शराइत, और ये शर्तें लगाई गई, अन्नहु बिहादही शराइत युशबिहुल मस्दरा, इसलिए क्योंकि इन शर्तों की वजह से मफूल लहू मुशाबे हो जाता है मस्दर के, यानी मफूल मुतलक के, उसके मुशाबे हो जाता है। फयतअल्लकु बिलफ़िअलि बिला वासिततिन, तो फिर यह मुतअल्लिक हो जाएगा फेल के साथ बगैर किसी वासिते के, यानी दरमियान में किसी हरफे जर का वासिता लाने की जरूरत नहीं, उसके बगैर ही फेल के साथ ये मुतअल्लिक हो जाएगा। तअल्लुकल मस्दर बिही, जैसे कि मस्दर फेल से मुतअल्लिक होता है, यानी मफूल मुतलक फेल से मुतअल्लिक होता है बगैर किसी वास्ते के। बेखिलाफी मा इदख्तल शय उम्मीनहा, बेखिलाफ इसके कि जब खलल आ जाए इनमें से किसी चीज के अंदर, इन तीन शर्तों में से किसी के अंदर खलल आ जाए, कोई एक शर्त इनमें से पूरी ना हो, तो फिर इस सूरत में इसकी मुशाबहत मफूल मुतलक से न रहेगी, तो फिर यह मनसूब भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? आगे देखिए भाई, अल मफूलु माहु अयल्लदी फुइल लि मुसाहबतिहि बि अन तकून अल फाइलु मुसाहिबन लहू फी सुदूर अल फिअल अनहु अविल मफूलु बिहि फी वुकू अल फिअल अलैह। अच्छा भाई, आगे मफूल माहु की बहस शुरू हो रही है। भाई ये मफाइल खमसा में से आखिरी मफूल है। सबसे पहले हमने मफूल मुतलक के बारे में पढ़ा, फिर मफूल बिही के बारे में पढ़ा, फिर मफूल फीह के बारे में पढ़ा, और अभी बहस मुकम्मल हुई मफूल लहू की। अब आखिरी मफूल है मफूल माहू। मफूल माहू किसे कहते हैं, पहले जरा मतन मतन देखिए भाई। कहते हैं अल मफूलु माहू हुआ मस्कूरुन बादल वावी, मफूल माहू जो है वो वाव के बाद मस्कूर होता है। ले मुसाहबती ही, इस वजह से कि वह मुसाहिब होता है, यानी साथी होता है मामूल फिअलिन, फेल के मामूल का, क्योंकि वह मुसाहिब होता है फेल के मामूल का, लफ्जन और मानन, और वह फेल कभी लफ्जों में होगा और कभी माना के एतबार से फेल होगा। तो मफूल माहू किसे कहते हैं, वो जो वाव के बाद मजकूर होता है यह बतलाने के लिए कि यह मामूल फेल का मुसाहिब है, यानी यह उसके साथ है। भाई देखिए, एक मिसाल अपने सामने जरा लिखिए, फिर आपको बात समझ में आएगी। लिखिए भाई, जा जैदुन व अमरुन, जा जैदुन व अमरुन, तरकीब क्या है, जा फेल, जैदुन मरफू लफजन, मातूफुन आलै भाई, मरफू क्यों है? क्योंकि ये फाइल है जाआ के लिए, और ये मातूफुन आलै है क्योंकि आगे मातूफ आ रहा है। वह हरफे आतफ, आमरुन मरफू लफजन भाई, ये मातूफ है भाई, और मातूफुन आलै और मातूफ का एराब एक ही होता है। तो मातूफुन आलै अपने मातूफ से मिलकर ये फाइल हुआ जाआ फेल के लिए, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। जा जैदुन व आमरुन, आया जैद और अमर, जैद और अमर। देखो यहां पर हमने अमर का आतफ किया जैद पर, और आप पढ़ चुके हैं मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन आलै का होता है, और यहां पर मातूफुन आलै जैद वो फाइल है फेल के लिए, तो मातूफ यानी अमर उसका भी यही हुक्म है, वो भी फाइल है फेल के लिए। तो यानी ये मजीअत, ये आना जैसे जैद के लिए साबित है, इसी तरह अमर के लिए भी साबित है। मालूम हुआ जैद भी आया है और अमर भी आया है। तो ये जो वौ है इसने आतफ का फायदा दिया, और याद रखो ये वौ सिर्फ इतना बतलाता है कि जो मातूफ है ये शरीक है मातूफुन आलै के साथ उस चीज में जिसकी निस्बत इसकी तरफ की जा रही है, यानी जिस चीज की निस्बत मातूफुन आलै की तरफ की जा रही है मातूफ भी उसके अंदर उसके साथ शरीक है। और यहां पर मातूफुन आलै कौन? जैद। और उसकी तरफ किस चीज की निस्बत की जा रही है? मजीअत की। मालूम हुआ आया जैद भी है और आया आमर भी है। इससे ज्यादा तफसील ये वो बयान नहीं करता, ये सिर्फ इतना बतलाता है कि जो हुक्म मातूफुन आलै का है वही हुक्म मातूफ का भी है। मालूम हुआ आया जैद भी है और अमर भी है, लेकिन क्या दोनों इकट्ठे आए या अलग अलग आए? लफ्जों में तो जैद पहले है और अमर बाद में है, तो क्या वाकई जैद पहले आया और अमर बाद में आया, या अमर पहले आया था और जैद बाद में आया? नहीं भाई, वो कोई तफसील नहीं बयान कर रहा, ये तमाम सूरतों को शामिल है। अगर दोनों इकट्ठे आए हों तब भी मैं कह सकता हूं जा अजैदुन व अमरुन, और अगर दोनों अलग अलग आए हों मैं तब भी कह सकता हूं जा अजैदुन व अमरुन। जैद लफ्जों में पहले है और वाकई में भी जैद पहले आया हो और अमर बाद में, तब भी मैं कह सकता हूं जा अजैदुन व अमरुन। अगर इसका बराक्स हो, मसलन अमर पहले आया था और जैद बाद में आया था, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूं जा अजैदुन व अमरुन, क्योंकि ये वो कोई तरतीब का फायदा नहीं दे रहा, ये वो ये नहीं बतला रहा कि जैद का लफ्ज पहले है तो जैद पहले आया था और अमर बाद में आया था, नहीं नहीं, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि जिस चीज की निस्बत मातूफुन अलै की तरफ हो रही है उसी चीज की निस्बत मातूफ की तरफ भी है। तो ये तमाम सूरतों को शामिल है, चाहे दोनों इकट्ठे आए हों फिर भी आप यूं कह सकते हैं, चाहे अलग अलग आए हों फिर भी आप कह सकते हैं, जैद पहले हो अमर बाद में हो आप फिर भी कह सकते हैं, अमर पहले हो और जैद बाद में हो आप फिर भी कह सकते हैं, बल्कि जैद 10 साल पहले आया था अमर आज आया है, लेकिन आप फिर भी कह सकते हैं जा अजैदुन व अमरुन, जैद और अमर दोनों आए, क्योंकि बेशक जैद 10 साल पहले था लेकिन मजीयत उसके लिए है या नहीं। और ये वह सिर्फ इतना ही बतला रहा है कि जो निस्बत एक की तरफ है वही निस्बत दूसरे की तरफ भी है, इससे ज्यादा कोई तफसील बयान नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं यह बतलाना कि दोनों इकट्ठे आए हैं, दोनों इकट्ठे आए हैं, तो उसकी एक सूरत तो यह है कि मान का लफ्ज साथ अलग ले आते हैं, जा अजैदुन व अमरुन मान भाई, जैद और अमर इकट्ठे आए। और एक सूरत यह है, मुख्तसर सूरत यह है कि मान का लफ्ज लाने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि आप व अमरुन न पढ़ें व अमरन पढ़ दें, जा अजैदुन व अमरन। यह अमरन इसको आपने मफ़ऊल माहू बना दिया, यह वो बमाने मा के बाद है, यह वो किस माना में है? मा के माना में है। तो आप देखो इसको पढ़ते ही या सुनते ही सुनने वाला समझ गया कि ये अमरन जो है ये मातूफ नहीं हो सकता। क्यों? ये लफ्जों पे नजर रखो, जा अजैदुन व अमरन, ये अमरन पर जैसे ही आपने नसब पढ़ा सुनने वाला समझ गया ये मातूफ नहीं है। अगर ये मातूफ होता, मातूफुन आलै तो मरफू है, इसको भी क्या होना चाहिए था? मरफू होना चाहिए था, लेकिन आप नसब पढ़ रहे हैं वो समझ जाएगा ये मफ़ऊल माहू है। ये नसब ने इसके बतला दिया कि ये मातूफ नहीं है। और ये वो किस माना में है? मा के माना में है। अब क्या माना हुआ? जा अजैदुन व अमरन अई मा अमरिन, जैद अमर के साथ आया। मालूम हुआ दोनों इकट्ठे आए हैं, तो जब आप आतफ करें तो इकट्ठे होने का फायदा हासिल नहीं, लेकिन अगर आप मफूल माहू बनाएंगे तो माइयत वाला इकट्ठे होने का फायदा भी हासिल हो जाएगा। तो आतफ की सूरत में सिर्फ मुशारकत फिलफेल मालूम हो रही थी, जब आपने क्या पढ़ा था जा जैदुन व अमरुन आतफ किया था, तो सिर्फ मुशारकत फिलफेल मालूम हो रही थी, यानी मजीयत के फेल में दोनों शरीक हैं, सिर्फ यह पता चल रहा था इकट्ठे आए या अलग अलग आए, कोई तफसील नहीं पता चल रही। लेकिन जब आप इसको मफूल माहू बनाते हैं जा जैदुन व अमरन, तो अब यहां मुशारकत फिल फेल भी मालूम हुई और साथ मुशारकत फिल जमान भी मालूम हुई कि दोनों का आना इकट्ठा है, आने का फेल दोनों ने किया है और दोनों का आना इकट्ठा है। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ आतफ की सूरत में सिर्फ क्या पता चलता है मुशारकत फिल फेल। तवज्जो है, फिर दोहराओ, आतफ की सूरत में सिर्फ मुशारकत फिल फेल का पता चलता है कि दोनों इस फेल के करने में शरीक हैं, इकट्ठे हैं या नहीं यह पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप मफूल माहू बनाए तो क्या फायदा, मुशारकत फिल फेल के साथ साथ मुशारकत फिल जमान भी मालूम हो जाती है कि इस फेल के करने में भी दोनों शरीक हैं और दोनों का इस फेल के करने का जमाना भी एक ही है, यानी इकट्ठे दोनों आए हैं। बात समझ में आ गई। तो यह है मफूल माहू भाई, तो यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं अल मफूल माहू हुआ मजकूर उन बाद अल वावी, मफूल माहू वो है जो मजकूर होता है वाव के बाद, ले मुसाहबती ही, इस वजह से कि ये जो मफूल माहू है ये मुसाहिब होता है मामूल फेलिन, किसका, मामूल फेल का। वो मिसाल जो मैंने लिखवाई है जरा उस पर भी नजर रखें और ये तारीफ जरा उस पर मुंतबिक करें। मिसाल क्या बन गई, जरा उसको मफूल माहू बनाकर पढ़ें, जा अजैदुन व अमरन, जा अजैदुन व अमरन। देखो ये अमरन जो है हुआ मस्कूर उन बाद अल वावी, किसके बाद मस्कूर है, वाव के बाद, क्या बतलाने के लिए, लि मुसाहबती ही, इस वजह से कि ये मफूल लहू मुसाहिब है, साथी है, यानी ये अमरन साथी है मामूल फेलिन, किसका साथी है, फेल का जो मामूल है, मकबल में फेल का कौन सा मामूल आया, जैद जो मामूल है जिसको फेल रफा दे रहा है। तो ये मफूल माहू किसे कहते हैं, वो जो वाव के बाद होता है, ये बतलाने के लिए कि ये मामूल फेल का मुसाहिब है भाई, यानी उसके साथ मिलकर उसने ये फेल किया है। बात समझ में आ गई। तो आतफ सिर्फ किस चीज का फायदा देता है, मुशारकत फिल फेल का, और मफूल माहू मुशारकत फिल फेल और मुशारकत फिल जमान दोनों का फायदा देता है। आगे देखिए भाई मतन, मतन जरा देखिए, लफ्जन औ मानन, और वो फेल कभी लफ्जों के एतबार से होगा और कभी माना के एतबार से होगा। तवज्जो है, वो फेल कभी लफ्जों के एतबार से होगा और कभी माना के एतबार से। जैसे अभी मैंने एक मिसाल क्या लिखवाई, जा अजैदुन व अमरन, ये जा देखो लफ्जों के अंदर फेल मजकूर है और कभी फेल लफ्जों में नहीं होगा बल्कि माना के एतबार से होगा। जैसे आगे मिसाल आएगी मतन में, मा लका व जैदन, मालका व जैदन, देखो यहां लफ्जों के अंदर कोई फेल नहीं है और ये व जैदन ये मफूल माहू है भाई, लफ्जों में तो फेल नहीं है लेकिन माना के एतबार से यहां फेल है, क्योंकि माना है मा तस्नाउ व जैदन, आप जैद की माइयत में क्या कर रहे हैं। तो देखो लफ्जों के अंदर फेल नहीं है लेकिन माना के एतबार से यहां फेल मौजूद है। तो कहते हैं लफ्जन औ मानन, और वो फेल कभी लफ्जों के एतबार से होगा वो मानन या माना के एतबार से होगा। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।